नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायासु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 12 श्लोक 2, इस अध्याय का नाम है राजा रहुगण तथा जड़ भरत की वार्ता आवृत्ति करेंगे। ज्वर आमय आर्तस्य यथा अगदम सत् निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतम् औषधम में ज्वरा मयार्तस्य गथा गदम सत् ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम सत् निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम सत् निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम सत् निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम सत् निदाघ दग्धस्य यथा हिमांभ कुदेह मानाहि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे हरे कृष्ण। पढ़िए। जरा मयार्तस्य यथा गदम सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भ कुदेहमाना हि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम् सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भ कुदेहमाना हि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे। पढ़िए और कोई। ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम् सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भ कुदेहमाना हि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे। ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम् सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भ कुदेहमाना हि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे। और कोई। ज्वरा मयार्तस्य यथा गदम् सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भ कुदेहमाना हि विदष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे। कोई पढ़ो माताजी। शब्दार्थ ज्वर ज्वर या ताप के आमय रोग से आर्तस्य पीड़ित पुरुष की यथा जिस प्रकार अगदम औषधि अथवा दवा हिमम्भ अति शीतल जल कुदेह इस शरीर में जो मल मूत्र जैसा गंदी वस्तुओं से पूरित है माना गर्व रूपी अहि सर्प से विदष्ट दंशित अथवा काटा गया दृष्टे दृष्टि वाले का ब्रह्मन् हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बचह शब्द बाणी ते तुम्हारी अमृताम अमृत औषधम दवा ने मेरे लिए। अनुवाद एवं तत्पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्व रूपी सर्प द्वारा दंशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूं। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृत में उपदेश वैसे ही है जैसे कि धूप से झुलसते हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। हम लोग आवृत्ति करेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्व रूपी सर्प द्वारा दंशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूं। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश वैसे ही हैं जैसे कि धूप से झुलसते हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। राजा रघुगण जड़ भरत से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्व रूपी सर्प द्वारा दंशित है। अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृत में उपदेश वैसे ही है जैसे कि धूप से झुलसते हुए व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। तात्पर्य, बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं, अस्थि, मांस, मल मूत्र आदि से भरा रहता है, तो भी संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे मांस, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल के योग से बने हैं। यदि ऐसा है तो फिर इन सर्वसुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते? संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है और भले मनुष्य के रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जड़ भरत ने राजा रघुगण को जो उपदेश दिए हैं वे अत्यंत उपादेय हैं। वे सर्पदंश की औषधि तुल्य हैं। वैदिक उपदेश अमृत एवं शीतल जल के समान है। बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं, अस्थि, मांस, मल मूत्र आदि से भरा रहता है, तो भी संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि मांस, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल के योग से बने हैं। यदि ऐसा है तो फिर इन सर्वसुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते? संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है और भले मनुष्य के रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जड़ भरत ने राजा रघुगण को जो उपदेश दिए हैं वे अत्यंत उपादेय हैं। वे सर्पदंश की औषधि तुल्य है। वैदिक उपदेश अमृत एवं शीतल जल के समान है। उमज्ञानतिरांध्रस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की इस अध्याय में महाराज रघुगण तथा जड़ भरत के बीच वार्तालाप हुई है। महाराज रघुगण जो सौबीर सिंधु देश के राजा हैं और सत्संग के लिए कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर जा रहे थे। तो गंगा सागर जाने के क्रम में उनका संपर्क जड़ भरत से होता है और जड़ भरत को पालकी में जब लगाए तो पालकी सही ढंग से वो नहीं चला रहे थे, जिसके चलते राजा रघुगण उनको डांट रहे थे, उनको चेतावनी दे रहे थे कि ठीक से पालकी ले चलो, मैं राजा हूं अब जानते नहीं हो, तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी जड़ भरत पालकी का जो संतुलन है वो नहीं बना पा रहे थे, पालकी असंतुलित हो जाती थी क्योंकि रास्ते में जो भी कीड़े मकोड़े या चींटियां आती थी उसको बचाने में उनका पैर विन्यास विसंगित हो जाता था। अन्य जो पालकी ढोने वाले थे उन लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता था, तो बार बार इस तरह से पालकी का जो संतुलन है बिगड़ जाता था। तो राजा रघुगण को थोड़ा क्रोध आता है और थोड़ा गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं राजा हूं और यह पालकी ढोने वाला यह बात नहीं समझता है। तो राजा रघुगण कहते हैं कि तुम अगर सावधान नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारी बेंस से पिटाई कर दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, तुम जानते हो मैं राजा हूं। ऐसे राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसको नरदेव कहा जाता है। राजा पूजनीय होता है क्योंकि वो भगवान के आदेश से प्रजा का पालन करता है। लेकिन राजा रघुगण यह नहीं समझ पा रहे थे कि जो पालकी ढोने वाला है वो ब्राह्मण है, भक्त है, ब्राह्मण वैष्णव है, वो यह समझते थे कोई शूद्र है। क्योंकि राजा जब देखे जड़ भरत को तो उनका शरीर बिल्कुल काला हो गया था, बिना नहाए उनका जो जनेऊ था, जो ब्रह्म सूत्र था, बिल्कुल काला हो गया था, उनका शरीर जो है धूल से और मल से भरा हुआ था। तो स्वाभाविक को वो लोग यही समझे शूद्र है। शूद्र का काम है सेवा करना। समाज में चार वर्ण चार आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी तरह चार आश्रम है, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। जैसे हमारे शरीर का चार प्रकार से विभाजन किया गया है, सिर है, उदर है, हाथ है और पैर है। सिर जो सारे शरीर को मार्गदर्शन देता है, दिशा निर्देश देता है, इसको ब्राह्मण कहा गया है। जो हमारे शरीर की सारी चेतना है मस्तिष्क अथवा सिर से आती है, इसको ब्राह्मण का पदवी दिया गया है। जैसे ब्राह्मण समस्त समाज का मार्गदर्शन देता है, उसी तरह सिर जो है हमारे सारे अंगों को मार्गदर्शन देता है। सिर के बाद हाथ आता है जो रक्षा करता है। सिर पर भी पैर होता है तो पहले हाथ ऊपर आता है, पैर में भी कांटा चुभता है तो हाथ वहां जाता है, पैर में अगर मल भी लगता है तो उसकी सफाई हाथ करता है। तो ब्राह्मण अथवा सिर सारे अंगों को सम्यक निर्देश देता है और हाथ अथवा क्षत्रिय जो है रक्षा करता है। पैर में कांटा लगता है तो हाथ यह नहीं समझता है कि वह शूद्र है, तुरंत हाथ वहां जाता है, उस समय वह शूद्र का स्पर्श करता है। जो क्षत्रिय होता है भुजा की तरह है, भुजा सारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, कभी भी कुछ प्रहार होता है तो पहले हाथ ऊपर, हाथ से हम कोशिश करते हैं, तो हाथ जो है क्षत्रिय है, छत्र से क्षत्रिय शब्द उत्पन्न होता है। छत्र का अर्थ होता है जो सुरक्षा देता है। जैसे हम इस मंदिर के छत्र के नीचे बैठे हैं, सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा करता है। कभी हम पेड़ के छत्र में बैठते हैं, कभी छत्र लेकर चलते हैं सुरक्षा के लिए। तो क्षत्रिय इस शरीर में जो भुजा है वो क्षत्रिय का कार्य करता है, और जो उदर है पेट है वो भरण पोषण करता है। समस्त समाज का जो पालन करता है वो पेट अथवा वैश्य है। वैश्य को पेट से उपमा दिया गया है। वैश्य जो है धन उपार्जन करता है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, कृषि करना, गोरक्षा करना, वाणिज्य करना, धन उपार्जन करना, इससे समाज का भरण पोषण होता है। तो पेट जो है वैश्य है, और पैर जो है जो सबकी सेवा करता है, सारे अंगों को बहन करता है, वो पैर है। पैर अगर ना रहे तो हम चल नहीं सकते हैं। सारे शरीर का जो भार है वो पैर पर है। किसी का एक पैर कर दिया जाता है कोई बीमारी से तो दूसरा सहारा लेता है। किसी किसी का दोनों पैर नहीं होता है, ये बीमारी अथवा जन्म से ही, तो वो चल नहीं पाता है, फिर दूसरा सहारा लेता है। लेकिन जो पैर है, जिसके पास पैर है, वो सारे अंगों को समुचित जगह पर ले जाता है। पैर के द्वारा हम चल करके अपने गंतव्य तक जाते हैं। पर यह नहीं सोचता है कि हम सारे अंगों को ढो रहे हैं। इस शरीर में ऐसी व्यवस्था है जो सब मिल करके एक दूसरे को कोऑपरेशन करके शरीर के संपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। शरीर का एक अंग भी अगर क्षत विक्षत हो जाता है तो उसका कार्य दूसरा अंग नहीं कर पाता है। जैसे आंख है, इस शरीर में आंख का भी बहुत महत्व है। आंख के द्वारा मस्तिष्क जो है आंख के माध्यम से देखता है। मस्तिष्क जो है सिर के द्वारा चलता है। मस्तिष्क जो है हाथ के द्वारा कार्य करता है। समाज में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अन्यों के सहयोग से कार्य करते हैं, वो आदेश देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पैर को आदेश मिलता है तो पैर चलता है, हाथ को आदेश मिलता है तो कार्य करता है। कुछ सुनने की आवश्यकता होती है तो कान के द्वारा, मतलब मस्तिष्क जो है इन इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। मस्तिष्क का दूसरा फेज जो है मन होता है। मन बुद्धि ये मस्तिष्क का ही अलग अलग भेद है। जैसे चेतना है वो भी मस्तिष्क का ही एक फेज है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क ही कार्य करता है। मस्तिष्क विहीन सारे अंग निरर्थक हैं। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर सिर से अलग कर दिया जाए तो निरर्थक हो जाता है। बिना सिर का कोई अंग कार्य नहीं करता है। सारे अंगों का जो शक्ति का जो स्रोत, जो जनरेटर होता है, मस्तिष्क से होता है। सारे अंगों में चेतना मस्तिष्क से प्रवाहित होती है। शरीर को अलग करने से शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। आप देखें, आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि बिना सिर का कोई व्यक्ति आता है, बिना पैर का व्यक्ति चलता है सहारा लेकर के, बिना हाथ का भी हम लोग देखते हैं। किसी किसी का दोनों हाथ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति भी दिखाई देते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं देखा होगा बिना सिर का, कोई बिना सिर का व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। बिना हाथ वाला भी व्यक्ति आता है मंदिर में या कहीं बाजार में, बिना पैर के भी व्यक्ति दिखाई देते हैं। किसी किसी का दोनों पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो भिसक कर चलता है, या कोई गाड़ी पर चलता है बिना दोनों हाथ के भी व्यक्ति होते हैं, ये बिना सिर का कोई क्रियाशील नहीं होता है। तो सिर जो है इस शरीर में बहुत महत्व रखता है। तो ऐसे सिर कौन है, इस समाज में सिर क्या है, तो जो प्रवर ब्राह्मण है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जड़ भरत जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यहाँ पर राजा रघुगण उनको ब्राह्मण श्रेष्ठ से संबोधित कर रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म रियलाइजेशन कर लेता है, ब्रह्म का अनुसंधान कर लेता है, ज्ञान विज्ञान में दक्ष है, समो दमो तपस्यम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावच। ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को समन दमन कर लिया है, बाह्य इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। मन सूक्ष्म इंद्रिय में आता है और सारे इंद्रियों को क्रियान्वित करता है, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और उसके ऊपर ग्यारहवां जो है मन आता है। मन को बहुत महत्व दिया गया है कि इंद्रियों को मन जो है शासित करता है, लेकिन वही मन जब विज्ञान के द्वारा इंद्रियों पर कार्य करता है तो उसको बुद्धि योग कहते हैं। और वही मन जब कुबुद्धि कुमार्ग पर चला जाता है, इंद्रियों पर शासन करता है, तो उसको विकर्म कहते हैं, वो पाप कर्म करता है या बंधन में पड़ जाता है। इसलिए मन जो है इंद्रियों का स्वामी है भौतिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रियों के स्वामी भगवान है, इसलिए भगवान का नाम है ऋषिकेश। जब इस रहस्य को कोई जान जाता है, इस अध्यात्म को समझ जाता है, तो ब्राह्मण कहलाता है, जो मन बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है उसको ब्राह्मण श्रेष्ठ। अर्थात जड़ भरत जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ, मन बुद्धि इंद्रियों को अपने वश में कर लिए थे। हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर, ब्रह्म स्तर पर, ब्रह्मभूत अवस्था में रहते थे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, कभी किसी भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता है वो ब्रह्मभूत कहलाता है। जैसे जड़ भरत को जब पालकी में लगाया गया तो भी वो विचलित नहीं थे, वो अपना परिचय भी नहीं दिए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र नहीं हूं। अगर इतना कहते कि मैं ब्राह्मण जाति का हूं तो उसे राजा पालकी में नहीं लेते, लेकिन इस द्वैत से वो मुक्त थे। द्वैत का अर्थ होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, ये उपाधि से मुक्त थे, शरीर के उपाधियों से मुक्त थे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्व निर्मलम। तो अपना परिचय अगर देते कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूं, मैं भक्त हूं, मैं भजन करता हूं निर्जन स्थान में, तो कोई पालकी नहीं लगाता। उसी तरह जब आदिवासियों ने उनको बलि देने के लिए जब तैयार किया तो उस समय भी वो नहीं परिचय दिए, अगर अपना परिचय देते तो उनको वो लोग बलि नहीं देते, क्योंकि बिल्कुल ब्रह्म में स्थित थे। इसलिए राजा रघुगण उनके वक्तव्य को सुन करके समझ गए कि ये ब्राह्मण है, भक्त है, ब्राह्मण श्रेष्ठ। और जिनका उपदेश अमृत के समान लग रहा था, तो राजा रघुगण कह रहे हैं कि आपका उपदेश ऐसे शीतल है जैसे कोई व्यक्ति गर्मी में झुलस रहा है और उसके लिए जैसे शीतल जल प्राप्त हो जाता है, तो अपने को बहुत शांति महसूस करता है। इस संसार दावाग्नि में, इस संसार को दावा नल कहा गया है, संसार दावा नलली ढलो का। इस संसार में हर व्यक्ति जो है त्रिताप से ग्रसित है, दैहिक दैविक भौतिक, इसको त्रिताप कहते हैं। त्रिताप के ज्वर से हर व्यक्ति ग्रसित है, इसकी औषधि क्या है? तो भगवत कथा मृतम, ये भव औषधि है, ये त्रिताप की औषधि है। इस औषधि को जो प्राप्त कर लेता है, ये त्रिताप से, ताप से मुक्त हो जाता है। ताप है, अनुताप है, विषाद है, निखाद है, खेद है, अफसोस है, मान है, अपमान है, दिन है, रात है, सुख है, दुख है, प्राप्त है या कुछ नहीं प्राप्त है, ये द्वंद्व इसको बोलते हैं, जुड़ा रहता है। जैसे जन्म है तो मृत्यु भी है, जन्म के साथ मृत्यु भी है, जुआ है तो जरा भी है। कोई बहुत युवक है तो उसको जरा को भी प्राप्त करना है, कोई बहुत धनी है तो उसके साथ गरीबी भी जुड़ी है, कभी वह गरीब हो जाता है, कोई बहुत बलवान है तो फिर बाद में वृद्ध हो जाता है, कोई बहुत सम्माननीय है तो बाद में उस सम्मान चला जाता है, कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त किया है तो कुछ समय के बाद बिल्कुल पद चला जाता है, इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंदर विमुक्त सुख दुख संघई गच्छंत अभयम पदम, जो इस द्वंद्वों को पार कर लेता है, इस वचनामृत से, भगवान के नाम रूप गुणलीला से, तो इस द्वंद्व से वो मुखरित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। यहाँ राजा रघुगण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके वचनामृत वैसे ही है जैसे कोई रेगिस्तान में पानी के बिना तड़पता है। रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है और वहां गर्मी भी ज्यादा होती है, जब बालू दोपहर में तप्त होता है तो भीषण गर्मी लगती है। तातल सैकत बार बिंदुसम सुतमित रमन समाजे, ये संसार जो है दावा नल है और इसमें सुतमित रमनी, ये जो समाज है जिसमें हम चाहते हैं कि अब सुख मिलेगा, लेकिन ये तप्त बालू में प्रदेश की तरह है, लेकिन इसमें शांति है तो केवल साधु संग या कोई महान भक्तों के संग से। महान भक्तों के संग में वो कैसे शीतल हो जाता है, जैसे कभी कभी भीषण गर्मी पड़ती है और बादल आता है, बारिश होता है तो शीतलता हो जाती है, कभी कभी खूब गर्मी होती है लेकिन जैसे वर्षा होती है गर्मी चली जाती है। तो ऐसे ब्राह्मण श्रेष्ठ जड़ भरत के संग में, सानिध्य में, उनकी सारी जो भौतिक बीमारियां थी, काम क्रोध लोह मोह मद मत्सर या अपने पद का गौरव, ये भी एक ताप है, इसको प्राप्त करके व्यक्ति गर्वित हो जाता है, बहुत धन प्राप्त करके भी व्यक्ति को गौरव हो जाता है, संसार का कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त करके व्यक्ति को गौरव हो जाता है, राजपद, राजा का जो पद है वो भी राजमद है, राजा को भी मद होता है, विद्वान को भी अपने ज्ञान का मद होता है, कोई बहुत सुंदर होता है तो उसको अपने सौंदर्य का मद होता है, किसी का बहुत धन है तो उसको भी मद हो जाता है। एक कवि लिखते हैं कि जैसे धतूरा होता है या भांग होता है या शराब होता है, उसको खाने के बाद आदमी मद में हो जाता है, नशा में हो जाता है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, विखाए बोराए नर यही पाए बोराए। धन में जितना नशा होता है उतना नशीले पदार्थ में नशा नहीं होता है। नशीले पदार्थ को खाने के बाद नशा होता है, लेकिन धन को प्राप्त करने के बाद ही नशा हो जाता है। जब व्यक्ति बहुत धन प्राप्त कर लेता है, मान लीजिए किसी को 1 किलो सोना प्राप्त हो जाए, ऐसे चलते हुए मार्ग में 1 किलो सोना मिल जाए, तो सोना मिलने से ही उसके अंदर अलग भाव आ जाता है। जैसे कोई शराब पी लेता है या भांग खा लेता है, वो लगता है कि वो राजा हो गया, बादशाह हो गया है, हाथी पर सवार है। कोई भांग खाता है तो उसको अलग चेतना प्राप्त हो जाती है। जो लोग भांग खाते हैं वो भांग के नशे में वो सोचते हैं कि मैं भारत का बादशाह हूं। तो सोना अधिक मिल जाने से उसको नशा हो जाता है। तो नशीले पदार्थों से भी अधिक नशा है धन में। केवल प्राप्त होने से ही, खाने की जरूरत नहीं है, केवल प्राप्त होने से आदमी पागल हो जाता है। तो ऐसे जब किसी को नशा हो जाता है, भौतिक रोग से ग्रसित हो जाता है, और उस ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए अमृत क्या है? तो उपदेश। जैसे राजा रघुगण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका उपदेश जो है हमें अमृत की तरह लग रहा है, और हमारे ताप को, विषाद को खत्म कर रहा है। जैसे बादल आता है, तो एक कवि लिखते हैं कि साधु बड़े परमार्थी, घनजों बरसे आए, तपन बुझावे और की आपन पारस लाए। ऐसे ब्राह्मण साधु बड़े परमार्थी होते हैं, और दूसरे को, संशय को, मोह को, रोग को, ताप को, विषाद को वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे बादल आता है और वर्षा करता है तो चारों तरफ एसी हो जाता है, वातावरण शीतल हो जाता है। हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे, इस बार बहुत गर्मी थी, भीषण गर्मी थी, एसी भी चला रहे थे हम लोग, लेकिन एसी में भी पसीना निकल रहा था, सबका कपड़ा जो है बिल्कुल तर बतर हो गया था पसीने से। और जो लोग पीछे के सीट में बैठे थे, रति रमन प्रभु, मंगल नीले प्रभु और लोग, उन लोगों का हालत और खराब था। तो एसी काम नहीं कर रहा था भीषण गर्मी में। जैसे ही कुछ समय बाद वर्षा हुआ तो चारों तरफ एयर कूलर चल गया, जैसे चारों पूरा वातावरण एसी में तब्दील हो गया। तो बादल जो है सबके ताप को हर लेता है चंद मिनट में। बादल के लिए समय नहीं लगता है। आप जब गाड़ी में, एसी गाड़ी में चलते हैं, खूब दोपहर की गर्मी होती है, तो एसी चलाने के बाद भी गर्मी नहीं जाती है, लेकिन जैसे वर्षा होती है तुरंत जो है वातावरण शीतल हो जाता है। तो वैसे ब्राह्मण साधु बड़े परमार्थी होते हैं, वे बादल की तरह कारण आकर वर्षा करते हैं। क्या वर्षा करते हैं? भव औषधि, भगवत कथामृतम। जैसे परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो कथा सुनकर उनका भूख प्यास सब चला गया। जिस भूख प्यास से ग्रसित होकर के समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिए थे, भूख प्यास से इतने विक्षिप्त थे कि श्रृंगी मुनि के, समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिए, अपना आपा खो दिए। अपना जो, वो नहीं समझे कि ये महान ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में हैं। भूख प्यास में व्यक्ति कभी कभी अपना संतुलन खो देता है। लेकिन वही परीक्षित महाराज 3 दिन के बाद भी उनको भूख प्यास की कोई अनुभूति नहीं थी, क्योंकि भगवान के विषय में सुन रहे थे। भगवान की कथा इतनी रसमय है और ऐसी है जो हमारे ताप को दूर कर देती है। शारीरिक आवश्यकताओं को भी तुच्छ कर देती है। जो भौतिक आवश्यकता है वो तुच्छ है, वो मलवत है। जब कोई उस अवस्था पर स्थिर होकर भगवान की कथा का श्रवण करता है तो संसार का सुख जो है उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। परीक्षित महाराज के लिए सर्दी गर्मी भूख प्यास महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए कहते हैं पिबंतम तव मुखाम भोजम चुतम हरि कथा अमृतम। हरि कथा अमृतम, भगवान की कथा को अमृत कहा गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव सन्नितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो कथा अमृतम है यही वास्तव में दवाई है, यही औषधि है। और संसार रूपी सागर में डूबते हुए या झुलसते हुए के लिए यही सहारा है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति हैं उनको इसमें रस नहीं प्राप्त होता है। जैसे एक विष खाने वाला कीड़ा होता है, उसको अमृत फल अच्छा नहीं लगता है। अमृत फल भी दीजिए तो भी वो विष का फल खाता है। जो जो संसार के सुखों में जो आसक्त हैं वैसे लोगों के लिए ये अमृत अच्छा नहीं लगता है। या जो एक और कीड़ा होता है जो काठ में भी लकड़ी में भी होल कर देता है, लकड़ी को भी छेद छेद देता है, लेकिन वही कमल के कोष में बन जाता है। बनत कमल के कोष, कमल के पखुड़ियों में वो बन जाता है, उसको छेद नहीं पाता है आसक्ति के चलते। वो कमल में इतनी आसक्ति हो जाती है उसके गंध में, उसके शीतलता में, उसके कोमलता में, कि आसक्ति के चलते कमल में ही बन जाता है। बनत कमल के कोष, जो लकड़ी को भी काट सकता है लेकिन आसक्ति के चलते उसको तोड़ नहीं पाता है। और हाथी के द्वारा वो रौंद दिया जाता है। मतवाला हाथी जब कोई गार्डन में जाता है तो सारे कमल की पखुड़ियों को दंथल सहित रौंद देता है, उसी में वो मर जाता है। अगर उसको तोड़कर बाहर आ जाता तो बच सकता था। तो संसार में आसक्ति के चलते लोग इस आध्यात्मिक सुख को आस्वादन नहीं कर पाते हैं। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि संसार में वास्तव में तीन रत्न है, तीन रत्न है पृथ्व्याम, तीन रत्नानि जल्लम अन्नम सुभाषितम मुढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधेयते। सुभाषित जल्लम अन्नम सुभाषितम, शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। और सुंदर युक्ति गीता भागवत भगवतमय संदेश, यही तीन रत्न है। लेकिन लोग हीरे को सोने को रत्न मानते हैं। हीरा खाकर कोई रह नहीं सकता है, सोना पहन करके कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। प्यास लगी हो तो पानी की जरूरत है, भूख में अन्न की जरूरत है। सोना चांदी खूब हो उससे क्या शरीर के लिए क्या लाभ है। जिसको शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है और शुद्धमयी भगवान की शुद्ध कथाएं मिलती हैं तो वो पर्याप्त है। गरीब व्यक्ति को भोजन न दिया जाए, उसको एक तोला हीरा दे दीजिए तो क्या कर सकता है। या व्यक्ति खूब भूखा है उसको हीरे का हार दे दीजिए कि ये पहन लो भूख चली जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, उसको भोजन चाहिए। व्यक्ति संसार के दुखों से ग्रसित है, अपना अस्तित्व नहीं जानता है, अपना स्वज्ञान नहीं है, तो उसका भ्रम संशय कैसे दूर होगा। व्यक्ति देह को ही, यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो लोग देह को ही स्व आत्मानम स्वयं मानते हैं, स्वयं आत्मा मानते हैं, बद्ध जीव में व्यक्ति देह को ही अपना स्वरूप मानता है कि मैं देह हूं। और देह क्या है? अस्थि मांस मल मूत्र आदि से बना है, रोम है, चर्म है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, खून है, मल है, मूत्र है, इसे शरीर बना है। और इसमें ममत्व कर लेना, अहम बुद्धि कर लेना, और इस देह से संबंधियों में भी अहम ममेति कर लेना, यह अज्ञान है, यही नारकीय परिस्थिति है। जब कोई व्यक्ति मल मूत्र चर्म मांस मज्जा हड्डी इस अष्ट विकार, इस शरीर में अष्ट विकार है, रोम है, चर्म है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, कफ वात पित्त भी है, तो ये शरीर विकार से भरा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति इन गंदी वस्तुओं से वैसे ही संबंध रखता है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से संबंध रखते हुए भी उसे विरक्त रहता है, घर में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता है, घर का कार्य करते हुए भी उस घर के वस्तुओं में आसक्त नहीं होता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति इस देह में रहते हुए भी देह में आसक्त नहीं होता है। वो जानता है कि देह में रहना हमारी परवशता है, हम देह में रहने के लिए विवश हैं, बद्ध आत्मा देह में रहने के लिए विवश है, क्योंकि उसको इस देह में रहने के लिए सजा दी गई है। जैसे कोई कैदी जेल में रहने के लिए विवश होता है और समय आने पर फिर जेल से उसको मुक्त कर दिया जाता है, ये संसार के असंगत वस्तुओं में भी आत्मा का जब संगत होता है तो इसमें अनासक्त होने के लिए उपदेश, ऐसे उपदेश की जरूरत होती है। जब ऐसा राजा रघुगण को जैसे ही उपदेश प्राप्त हुआ जड़ भरत से, तो इस देह के अहम ममेति से मुक्त हो गए कि मैं राजा हूं या मैं बहुत सुंदर हूं, मैं देह हूं। जैसे ही उपदेश सुने वे उससे मुक्त हो गए। जैसे किसी को सर्प काट देता है, जब किसी को सर्प काट देता है तो कोई सपेरा आता है, विष उतारने वाला आता है, तो मंत्र से विष को उतार देता है, बहुत जहरीला सर्प भी काट देता है, लेकिन अगर योग्य व्यक्ति मिल जाता है सर्प उतारने वाला तो जड़ी बूटी के द्वारा या मंत्र के द्वारा उसको ठीक कर देता है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सर्प की औषधि जानते हैं या सर्प को मंत्र के द्वारा वश में कर लेते हैं और सर्प के द्वारा ही विष को निकाल लेते हैं। जैसे चींटी उड़ाने वाला होता है, जो सर्प व्यक्ति को काटा उसी सर्प को मंत्र के द्वारा वो आह्वान करता है और सर्प आकर के विष को खींच लेता है। तो संसार के संसारी लोग उसी तरह से विष से ज्वरित हैं जैसे किसी को सर्प काट देता है, और उसी समय कोई सर्प के विष को उतारने वाला व्यक्ति आता है तो उसको ठीक कर देता है, तुरंत उसको विष से अलग कर देता है। तो हमारी जो भौतिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति को कौन बदल सकता है? तो राजा रघुगण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके जो वचनामृत है, आपका जो उपदेश है, यह सर्प के विष को उतारने के लिए पर्याप्त है। इस वचनामृत को जो भी धारण करता है वो विष से बच जाता है। संसार दीवा नले दीवा निसी हिया जले, संसार जो है दिशा नल की तरह, संसार दिशा नले दीवा निसी हिया जले, जुड़ाई नू ना कोई उपाय। इसमें हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं? संसार विषाग्नि से ग्रस्त है। संसार को दवाग्नि भी कहा गया है, विषाग्नि भी कहा गया है, और ऊपर से सूर्य का भी ताप है, और कभी कभी बर्फ भी गिरता है, कभी सूर्य का इतना ताप बढ़ जाता है कि अपने आप आग लग जाता है, कभी कभी ऐसा आग लग जाता है, या बांस बांस के रगड़ से आग लग जाता है। जंगल में जंगल की आग बहुत भयंकर होती है, और जब आग लगती है तो आप बुझा नहीं सकते हैं, बाल्टी से या पाइप के द्वारा आप नहीं बुझा सकते हैं। जब वर्षा होती है तब आग बुझती है। तो वर्षा क्या है? वर्षा है कि ऐसे महान भक्त जब कृपा करते हैं, राजा रघुगण कहते हैं ऐसे साधु के संग में जब कथामृत की वर्षा होती है तब दवाग्नि बुझ जाती है, तब दीवा निसी हिया जले, जो हम जलते हैं रात दिन, तब हमें शीतलता प्राप्त होती है। हम लोग एसी में भी जलते रहते हैं, लोग कूलर चलाते हैं फिर भी अंदर चिंता जलाती है। चिंता से व्यक्ति ग्रस्त है और चिंता में जलते रहता है। जब कोई साधु पुरुष का शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर लेता है तो चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि साधु पुरुष हमेशा भगवान के चिंतामणि नाम का स्मरण करते हैं, जो चिंतामणि नाम समस्त चिंताओं को ध्वस्त कर देती है। तो राजा रघुगण जड़ भरत के उपदेश को सुन करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। पहले तो ये मानते थे कि मैं राजा हूं, मेरा कर्तव्य है किसी को दंड देना, किसी के ऊपर शासन करना, किसी को भी सेवा में लगा लेना। लेकिन जैसे ही वह समझे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं तो महान भक्त है, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षी कृत विग्रहाय, राजा रघुगण ने कहा हे महात्मा, आप श्री भगवान से अभिन्न हैं, आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोध दूर हो गए हैं, आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं। जैसे धुएं में अग्नि छिपी रहती है, या काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, या कभी कभी भस्म में भी अग्नि छिपी रहती है, उसी तरह आप इस ब्रह्म बंधु शरीर में, ब्रह्म बंधु से कहा जाता है जो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण के स्तर से गिर जाता है, या ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मण का कर्म नहीं करता है, जो ब्राह्मण के स्तर से पतित हो जाता है उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं लेकिन ब्राह्मण के कर्म से च्युत हो गया है तो ब्रह्म बंधु का, तो कहते हैं आप ब्रह्म बंधु के वेश में घूम रहे हैं, अवधूत वेश में घूम रहे हैं, आप कौन हैं? पहले नहीं समझ पाए आप, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण ही नहीं है ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणोत्तम ब्राह्मणों में भी उत्तम है। लेकिन मैं तो आपको समझा कि आप शूद्र हैं, कोई सामान्य जीव हैं, लेकिन आप इस तरह ऐसे भेष में घूम रहे हैं तो आपको मैं कैसे पहचानूं? कभी कभी भक्त प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे घूमते हैं उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, जैसे राजा रघुगण नहीं समझ पाए कि इतने बड़े महान भक्त हैं। तो कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के एक रूप होते हैं, भगवान के द्वितीय रूप होते हैं, अभिन्न हैं। भगवान और भगवान के भक्त अभिन्न हैं, यहां अभिन्न कहा गया है। अभिन्न इस रूप में कि भगवान भी करुणा वरुणालय हैं, दया के सागर हैं, और भगवान के भक्त भी पतितों के उद्धारक हैं, कृपा के सागर हैं, और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कल्पतरु के समान हैं। गुण में भगवान के ही समान होते हैं, भगवान के भक्त बहुत करुणा से पूरित होते हैं, इसलिए महत विचलनम, ऐसे भक्त लोग राजर्षि राजा रहुगण कहते हैं, इसीलिए आप करुणा से ओतप्रोत होकर हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए आप महत विचलनम महाप्रयाण में हैं। महत विचलनम निर्णाम गृहिणी विनिचेत शाम, हमारे जैसे घर गृहस्थी में आसक्त लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप विचरण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पाता कि आप इतने महान भक्त हैं, आप क्यों ऐसा रूप धारण किए हैं, अवधूत रूप में थे, केवल कौपिन पहने थे और मानो महीना दिन नहीं नहाए थे, कभी नहाते थे कभी नहीं भी नहाते थे, कभी संध्या वंदन करते थे कभी नहीं भी करते थे, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ना बोलते हैं कि संध्या वंदन आपको नमस्कार है, हे स्नान आपको नमस्कार है, जब कोई उस स्तर पर चला जाता है तो उसके लिए स्नान की जरूरत नहीं पड़ती है, वो संध्या वंदन पुरुषचर्या से मुक्त हो जाता है। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि अब मैं केवल यादव कुलपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में हमेशा व्यस्त रहता हूं, अब मुझे पितरों को पिंड दान करने के लिए समय नहीं है, स्नान करने के लिए भी समय नहीं है, हे त्रिकाल संध्या आपको नमस्कार है, मैं केवल श्री कृष्ण जो भगवान ब्रजन नंदन उनके लीलाओं के उनके नाम के स्मरण में ही मैं मस्त रहता हूं, मेरे पास और कुछ करने के लिए समय नहीं है। तो राजा रघुवर कहते हैं कि आप क्यों ऐसा रूप धारण किए हैं, ये ब्राह्मणा गाम बधूत लिंगा चरम तिलोका शिवमस्तु राज्ञम, मैं यह समझ सकता हूं कि आप जगत के कल्याण के लिए ऐसा रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं, हमारे जैसे दीनहीन पतित लोगों पर कृपा करने के लिए आपका आगमन होता है, ऐसे लोग विचरण करते हैं केवल पतित जीवों के उद्धार करने के लिए, शिवमस्तु राज्ञम, अब लोक मंगल के लिए विचरण करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है वो देश देश में गांव गांव में शहर शहर में प्रचार के लिए जाता है, प्रहलाद महाराज स्तुति में कहते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए विचरण करते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, नहीं तो निर्जन स्थान में भजन कर सकते हैं, निर्जन स्थान में मुनि लोग जाकर भजन करते हैं, लेकिन जो बहुत पति जीवों पर कृपा कृपालु होते हैं वे जगह जगह प्रचार के लिए जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार में अधिकतर लोग स्वार्थी हो गए हैं, परमार्थी कम लोग हैं, जो परमार्थी होते हैं वो दूसरे को भी प्रचार में लगाते हैं, साधु बड़े परमार्थी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कैसे है वो चरम निर्जन वन में प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा, प्रायेण देव मुनय, प्राय देवता मुनि अपने मुक्ति के साधन में लगे रहते हैं, प्राय कि हमारा मुक्ति हो जाए हम भगवान के धाम में चले जाएं, प्रायेण देव मुनय, देवता लोग और स्वार्थी होते हैं, अगर कोई बहुत तपस्या करता है तो देवता लोग विघ्न डाल देते हैं या उसके तपस्या को भंग कर देते हैं, जैसे इंद्र कोई बहुत तपस्या करने लगता है तो इंद्र उसके तपस्या में विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो प्रायः देवता लोग स्वार्थी होते हैं, वो खुद अपने मुक्ति के प्रयास में लगे रहते हैं, अगर दूसरा कोई मुक्ति के प्रयास करता है तो इसको विघ्न उपस्थित कर देते हैं। इसलिए प्रायः प्रायेण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा, और क्या करते हैं, मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा, और जंगल में मौन व्रत लेकर विचरण करते हैं, परार्थ निष्ठा नहीं है। परार्थ निष्ठा मैंने दूसरे का भी उद्धार हो, उपकार हो, वो उसके प्रति उनको लोभ नहीं होता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज परार्थ निष्ठा थे, इसलिए असुर बालकों को उपदेश दिए। प्रहलाद महाराज प्रीचिंग किए, असुर बालकों को भी प्रीचिंग किए, वो उनको कहे कि तुम लोग क्यों संसार के सुखों में लगे हो, ये सुख तो हर जगह प्राप्त है, हर योनि में प्राप्त है, तुम भगवान का भजन करो। सुख तो वैसे ही आता है जैसे बीमारी आती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। देह जोगे न देह नाम, जैसे ही व्यक्ति को देह मिलता है उस देह के अनुरूप उसको भोग भी प्राप्त होता है। तो हे दैत्य बालकों, तुम ऐसे सुख के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? प्रयास किसके लिए करना है? तो कौमार आचरित प्राज्ञो, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भोग तो सर्व सुलभ है, बिना प्रयास किए भी कभी कभी व्यक्ति बहुत धन प्राप्त कर लेता है। धन या सुख वैसे ही प्राप्त होता है जैसे बीमारी के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, कोई औषधि नहीं लेता है, बीमारी अपने आप आ जाती है। तो प्रायः देवता और मुनि लोग स्वार्थी होते हैं, दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के उद्धार के लिए उनकी चिंता नहीं होती है। लेकिन आप जैसे महात्मा हमारे जैसे बद्ध जीवों पर उपकार करने के लिए विचरण करते हैं। वास्तव में राजा रघुगण भी महान भक्त थे, वो भी सत्संग के लिए जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में। तो जड़ भरत देखे कि ये एक योग्य पात्र है, इसको ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ी आसक्ति अपने देह में, अपने पद में, इसीलिए वो बोले मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। तब जड़ भरत उपदेश दिए कि आप कौन हैं, आप किसको दंड दे सकते हैं, दंड तो आपके हाथ में नहीं है, सबसे बड़े दंडधर भगवान हैं, भगवान ही किसी को दंड देते हैं, भगवान ही किसी को सुख दुख देते हैं उसके कर्मानुसार। राजा भी एक निमित्त होता है, भगवान के भले प्रतिनिधि होता है लेकिन निमित्त होता है, वास्तविक दंडधर भगवान है। जब यह राजा रघुगण को उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, आप किसकी चिकित्सा कर सकते हैं, आप हमारे देह की चिकित्सा कर सकते हैं लेकिन हमारी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, कोई आत्मा को न मार सकता है, न जला सकता है, न उसको छेद सकता है, नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। जब यह आत्मा के स्तर पर जब ज्ञान सुने तो राजा रघुगण तुरंत पालकी से गिरकर स्तुति कर रहे हैं कि मैंने ही जाना, भगवान के जो भक्त हैं, बालक है उसको भी नमस्कार है, नमो शिशुभ्यो नमो जीवभ्यो। भगवान का भक्त अगर शिशु भी है तो भी वो नमस्कार के योग्य है, बूढ़े बूढ़े लोग भी भक्तों को प्रणाम करते हैं। तो बोले कि आप वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं, मैं आपको नहीं समझ पाया था। तो इसी संदर्भ में ये स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके वचनामृत से मेरा ज्ञान ध्वस्त हो गया है, मैं इस देह में जो मल मूत्र और कृमि से जो बना है, इस देह में मैं आसक्त था, राजा मानता था, अब मेरा अज्ञान दूर हो गया है। जैसे अर्जुन का है ना कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मया चित, लव मात्र साधु संग, थोड़ा संग से जड़ भरत के थोड़े संग से राजा रघुगण का चित्त बिल्कुल बदल गया और ज्ञान में स्थिर हो गए। और इस तरह से आगे की वार्ता और आप सुनेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है? समय हो गया ना, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।